The Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijanavallabha Girivaradhari Gopijanavallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijanavallabha Girivaradhari Gopijanavallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava तुम जब हारे जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जन वल्लभ गिरिवर धारे यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन 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 ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारे यमुना तीरावन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे
हे कृष्णा। तो आप सबके बीच में काफी दिनों के बाद में आकर कृष्ण कथा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए बड़े प्रसन्नता की बात है। आप सब यहां श्री श्री राधा गोकुलानंद जी के मंदिर में आए हैं, उनके सुंदर श्री विग्रह का दर्शन कर ही रहे हैं और साथ साथ में श्री श्री गौर निताय और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, इनका विग्रह भी है जिनका दर्शन आप कर रहे हैं। ये विग्रह जो है ये कोई साधारण पुतली या प्रतिमा नहीं है। साधारणतः बाहर नेताओं के, वैज्ञानिकों के इत्यादि कई प्रतिमाएं बनाई जाती हैं शहर के अलग अलग स्थान स्थानों में स्थित किए जाते हैं और फिर वो चौक का नाम भी उस व्यक्ति के पीछे रखा जाता है। तो ये यहां मंदिर में जो विग्रह हैं, मूर्तियां हैं, वो इस तरह की प्रतिमा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये साक्षात भगवान की मूर्ति है, किसी साधारण या असाधारण व्यक्ति की प्रतिमा नहीं है। साक्षात भगवान यहां पर उपस्थित हुए हैं हमें दर्शन देने के लिए, हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए। और भगवान के विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। किसी साधारण या असाधारण व्यक्ति के विग्रह के मूर्ति में और उसमें बड़ा अंतर होता है, लेकिन भगवान के अर्चा विग्रह में और उनमें कोई अंतर नहीं होता। साक्षी गोपाल की कथा में जब वो नवयुवक ब्राह्मण गोपाल जी के सामने जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप कृपा करके मेरे साथ में आइए मेरे गांव में और साक्षी दीजिए कि वृद्ध ब्राह्मण ने आपके सामने वचन दिया था कि वो उनकी पुत्री का विवाह मेरे साथ करने वाले हैं और अभी वो इनकार कर रहे हैं, तो आप आके साक्षी दीजिएगा। तो उस समय गोपाल जी अर्थात गोपाल जी की मूर्ति ने जवाब दिया, मैं तो मूर्ति हूं, मैं कैसे चल सकता हूं। तो उस नवयुवक ब्राह्मण ने क्या कहा था, अगर आप बोल सकते हैं तो आप चल सकते हैं। और उस समय उन्होंने बताया, प्रतिमा न ही तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन, कि आप कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, हे गोपाल जी आप साक्षात व्रजेंद्र नंदन हैं, व्रज के इंद्र, व्रज के राजा नंद महाराज नंदन, उनको आनंद देने वाले, उनके सुपुत्र हैं आप। आप कोई साधारण प्रतिमा मूर्ति नहीं है, इसलिए आपके लिए सभी कुछ संभव है। आप मूर्ति के रूप में विराजमान हुए हैं और जब चाहें आप आपके सिंहासन से उतरकर मेरे साथ में चल भी सकते हैं। आप हर चीज संपन्न करने में समर्थ हैं, पूरी तरह से समर्थ हैं, आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो ये है भगवान और इनकी श्रीमूर्ति। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति प्रेम भावना से मुझे पत्र फूल फल जल आदि अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूं। तो भगवान सोचते हैं कि मैंने वायदा तो कर लिया कि मैं ये सब स्वीकार करूंगा, लेकिन करूंगा कैसे जब मैं मेरे भक्तों के सामने उपस्थित नहीं हूं, तो वो अर्पण मुझे कैसे करेंगे और मैं स्वीकार कैसे करूंगा। तो भगवान सोचते हैं कि मुझे भक्तों के सामने एक ऐसा रूप धारण करना चाहिए जिसको वो अपने साधारण नेत्रों से भी देख सकेंगे, जिनकी सेवा वो कर पाएंगे, जिसका श्रृंगार कर पाएंगे, आरती इत्यादि कर पाएंगे, नैवेद्य दिखा पाएंगे, मेरे सामने आके कथा प्रार्थना कीर्तन कर पाएंगे, मुझे भोग चढ़ा पाएंगे। तो भगवान ने इस तरह अपना अर्चा विग्रह का अवतार धारण किया। ये भी भगवान का एक अवतार है। भगवान अलग अलग तरह के अवतार लेते हैं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और सबका हृदय उनके चरण कमलों के प्रति आकर्षित करने के लिए। तो भगवान का जो ये रूप है, ये बड़ा दयालु रूप है, क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए बहुत ही योग्यता चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब तक कि हमारे नेत्रों के ऊपर शुद्ध प्रेम का अंजन का लेप नहीं लगाया जा सकता, तब तक हम भगवान को इन आंखों से देख नहीं सकते। केवल वो व्यक्ति जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हुआ है और जिसके हृदय में शुद्ध प्रेम है भगवान के प्रति, केवल वही व्यक्ति मात्र भगवान का दर्शन कर सकता है। लेकिन भगवान सोचते हैं कि ऐसे संसार में कितने लोग हैं। संसार में शुद्ध भक्तों की संख्या तो बहुत बहुत कम है, तो भगवान सोचते हैं कि वो सारे दूसरे जो मेरे भक्त हैं, जो शायद पूरी तरह से शुद्ध न हुए हों, या ऐसे जो लोग हैं जो भक्ति में आना चाहते हैं या भले नहीं भी आना चाहते हों, लेकिन इनका भी तो सबका उद्धार मुझे करना है। ऐसा नहीं कि केवल मेरे शुद्ध भक्तों का उद्धार करना है, तो किस तरह से मैं इनका उद्धार करूं? तो मुझे ये ऐसा रूप धारण करना पड़ेगा जिससे कि मैं अपने आप को मंदिर में स्थित करा लूंगा, और जो भी अल्प श्रद्धालु भी हो, अगर वो मंदिर में एक बार किसी पुण्य की वजह से, किसी पूर्व जन्म के सुकृति की वजह से इसके बल पर मंदिर में आ जाता है, तो साक्षात मेरा दर्शन तो कर पाएगा, उसकी भक्तोन्मुखी सुकृति बढ़ जाएगी, एक न एक दिन तो आगे चल के मेरा भक्त बन पाएगा वो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इस तरह से भगवान ने ये अर्चा विग्रह का रूप स्वीकार किया है। और ये विग्रह कैसा है? अभी जब हम यहां दर्शन करते हैं राधा गोकुलानंद जी के या गौर निताय के या जगन्नाथ बलदेव जी के, हम क्या देख रहे हैं? मूर्ति पत्थर की है, धातु की है, यहां राधा गोकुलानंद जी तो धातु के बने हुए हैं और जगन्नाथ जी तो लकड़ी के बने हुए हैं, वृक्ष से बने हुए हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये धातु है या लकड़ी है? नहीं, ये तो साक्षात सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण है। ये साधारण लकड़ी, साधारण धातु नहीं है। भगवान इतने कृपालु है कि वो इन धातु में, इन लकड़ी में, इस लकड़ी में वो प्रवेश करते हैं और इससे अभिन्न हो जाते हैं, केवल हमें दर्शन देने के लिए, हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि भगवान की श्री मूर्ति अर्चा विग्रह 8 प्रकार के पदार्थों से बनाई जा सकती है। आप में से बता सकते हैं कौन से धातुओं से या कौन से पदार्थों से हम भगवान की मूर्ति बना सकते हैं? एक है पत्थर, बहुत अच्छा, दूसरा लकड़ी, तीसरा धातु या लोहा, तो कह चुके हैं, चौथा मिट्टी, पांचवा बालू या रेती, पांचवा और कांच, कांच नहीं ठीक, इसको मणि कहते हैं, मणि, मणियों से, भले मणि कांच की बनी हो लेकिन ये छठा है, ये मणियों से बनी जा सकती है भगवान की मूर्ति। सातवां हीरा या मणि, हीरा एक ही है, चंदन वो मिट्टी में आ गया, लकड़ी तो आ गया, कागज अर्थात चित्र में, जब हम चित्र बनाते हैं, देखिए इतने सुंदर सुंदर चित्र हैं भगवान के, यहां आप दीवारों पर देख रहे हैं, तो इन चित्रों में और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि ये तो चित्र है मैं इसमें नहीं आऊंगा, नहीं, जहां भगवान का रूप है वहां भगवान है, जहां भगवान का नाम है वहां भगवान है, जहां भगवान का प्रसाद है वहां भगवान है, और जहां भगवान के भक्त हैं वहां भी भगवान है। तो भगवान के चित्र में भी भगवान उपस्थित हैं, उनके चित्र में और उनमें भी कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए भगवान के जो ग्रंथ होते हैं, उनकी वाणी, उनके शास्त्र जैसे गीता भागवत, ये वाणी भी उनसे अभिन्न है। जहां उनके ग्रंथ हैं, वहां श्री भगवान उपस्थित हैं। उसी तरह से जहां उनका चित्र है वहां वो हैं। इसलिए भगवान के वाणी अर्थात शास्त्र ग्रंथ इत्यादि और या वो चित्र हो, इनको बहुत ही प्रेम से सावधानी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इधर उधर हमें फेंकना नहीं चाहिए, या जहां हम बैठते हैं उस कुर्सी पर किताब नहीं रखनी चाहिए। कुर्सी में क्योंकि हम बैठ जाते हैं उस पे तो वो दूषित हो जाता है, इसलिए ऐसे स्वच्छ जगह में हमेशा किताब रखनी चाहिए। क्योंकि किताबों में चित्र रहते हैं भगवान के, भगवान की वाणी रहती है। इस तरह से ये सातवां पदार्थ हुआ। और आठवां मन। बहुत अच्छा। अभी आप एक क्षण के लिए सोचिए कृष्ण के बारे में, आंख बंद कर दीजिए और कृष्ण का रूप आपके मन में लाइए। एक क्षण के लिए बंद कीजिए सब आंख, कृष्ण को लाइए मन में। लाए तो कृष्ण आ गए आपके मन में, क्योंकि कृष्ण की श्री मूर्ति अपने विचार से भी अभिन्न है। जब आप कृष्ण का सुंदर रूप आपका मन ही मन में दर्शन करते हैं तो कृष्ण तुरंत उपस्थित हो जाते हैं, उनको देर नहीं लगती आने के लिए। तो देखिए कितनी सुंदर बात है। तो जो व्यक्ति हमेशा कृष्ण का स्मरण करता है तो वो तो मूर्तिमान मंदिर बन जाता है, साक्षात चलता फिरता मंदिर बन जाता है, तीर्थ स्थान बन जाता है। भवत विदा भगवता तीर्थ भूतानि कुर्वन्ति, विदुर के बारे में कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, कि आपको तीर्थ में जाते हैं आप तीर्थ स्थान बना देते हैं उसको। स्व अंतःस्थेन गदाभृता, क्योंकि आपके अंतःकरण में गदाभृता विष्णु साक्षात उपस्थित हैं, क्योंकि आप उनका स्मरण हमेशा करते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ कि एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे जो भगवान के बड़े शुद्ध भक्त भी थे, और वो सोच रहे थे कि मुझे भगवान की बहुत अच्छी तरह से सेवा करने की लालसा है, लेकिन सामग्री मेरे पास नहीं है। मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूं, मैं कहां से ये सब चीजें लाऊं, चंदन और अच्छे अच्छे दूध दही घी, ये सब चीजें कहां से लाऊं मैं। तो मन ही मन सोचने लगे कि ठीक है, मैं मन में ही ये सब करूंगा। अभी देखिए मन में तो सेवा करने की कोई सीमा नहीं है ना, मन में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अगर किसी व्यक्ति के प्रति क्रोधित है तो मन ही मन में उसको पीट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको गोली मार सकते हैं, लेकिन जब उसके सामने आते हैं तो फिर नहीं कर सकते। लेकिन मन में आप कुछ भी कर सकते हैं, कौन रोक सकता है आपको, है ना। तो उसी तरह से कभी कभी भक्तों के जीवन में परेशानी आती है कि परिवार के सदस्य उनको भक्ति करने नहीं देते हैं, जैसे गोपियों को वृंदावन में भी हुआ। ये परंपरा में चलती आई है, कोई नई बात नहीं है। गोपियों को भी उनके परिवार के सदस्य के लोगों ने कहा कि कृष्ण को देखने के लिए मत जाओ, तो थोड़ी गोपियां छुपके चली गई, थोड़ी गोपियां तो वहीं रह गई, लेकिन मन ही मन में कृष्ण का स्मरण करती रही। और इस तरह से यहां भी हम देखते हैं भक्तों को कभी कभी ऐसे बाधाएं आ सकती हैं। शरीर को बंधन मिल हो सकता है लेकिन मन का बंधन तो नहीं हो सकता। कहीं भी बैठे बैठे आप कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं। और मन का बंधन नहीं है इसका मतलब ये भी है कि साक्षात कृष्ण के सामने बैठकर प्रवचन सुनते सुनते भी आपका मन कहीं और भी हो सकता है। दोनों चीजें संभव है। तो ब्राह्मण सोच रहे थे, पास में तो अभी कुछ नहीं है लेकिन मन में तो मेरे पास सब कुछ है, सबसे अमीर आदमी हूं मैं। मन ही मन सोचने में क्या है, मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, मेरे पास सोना है चांदी है सब कुछ है। तो फिर वो ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठकर फिर उन्होंने सारे ऐश्वर्यशाली सामग्री एकत्र किए, भगवान के सुंदर मूर्ति की कल्पना की, और फिर सुंदर से सुंदर आभूषण गहने सोने के चांदी के हीरे मोती सब एकत्र किए, और फिर शुद्ध दूध, असली, बहुत ही असली देशी गाय का दूध, ये हमारे जर्सी गाय का नहीं, भैंस का नहीं, असली दूध, और फिर उसका घी, और फिर उसका मक्खन, पनीर, नाना प्रकार की चीजें बनाई, फिर नाना प्रकार के अच्छे अच्छे सब्जियां, भाजी, वो सब लाए, और वो भी कैसे, गोबर के खाद से बने हुए, केमिकल रसायन से खाद से बने हुए नहीं, वो भी अच्छे अच्छे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन। और फिर गंगा जी के तट पे गए, अपने मन ही मन में बहुत सारे मटके लेकर, कलश लेकर, और भगवान के अभिषेक के लिए वहां से एक कलश के बाद कलश गंगा जल लेकर आए, और रेशम के सुंदर सुंदर कपड़े सिलाए भगवान के लिए, सुंदर मुकुट, सोने की बांसुरी, इस तरह से नाना प्रकार के वस्त्र इत्यादि लेकर आए। और वो सोच रहे थे कि मुझे भगवान को खीर भी खिलाना चाहिए, अभी भगवान को दूध के सामग्री पसंद है, खास करके खीर तो बहुत पसंद करते हैं, दही इत्यादि। तो उन्होंने दूध गर्म करने के लिए रखा सिगड़ी के ऊपर, और दूध गर्म हो रहा था, और पीछे दूसरे काम में लगे हुए हैं, कोई कहीं सब्जी काट रहे हैं। तो इस तरह से जब दूध गर्म हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं कि दूध गर्म हो रहा है या नहीं, हो गया है कि नहीं, ये सब मन ही मन में हो रहा है। तो काफी समय बीत चुका था, क्योंकि इधर उधर में लाने से समय लगता है ना, इधर से आभूषण लाने हैं, उधर से जाके कुछ और लाना है, ये बनवाना है, कपड़ा बनवाना है। तो फिर जब उन्होंने अपनी उंगली डाली उस दूध में देखने के लिए कि दूध गर्म हो गया है या नहीं, तो क्या हुआ, दूध बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, और क्योंकि इतना ज्यादा गर्म हुआ था तो उनकी उंगली जल गई, और जैसे ही उंगली जल गई तुरंत उन्होंने उंगली को बाहर निकाला, और जैसे ही उंगली बाहर निकाला उनका ध्यान टूट गया, और फिर वही अपने आश्रम में, अपने गरीब स्थान में उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और इधर उधर देख रहे हैं, कहां गई मेरी श्री मूर्ति, कहां गए मेरे भगवान। और फिर देखने लगे यहां दर्द कर रहा है, उंगली उठा के देखा तो क्या देखते हैं, उंगली जल गया है। इसका क्या मतलब है कि जो वो ध्यान में देख रहे थे, कर रहे थे, साक्षात भगवान वहां थे और उन सब चीजों को स्वीकार कर रहे थे। तो देखिए, मानसिक पूजा या मन में भी भगवान की पूजा कितनी सुंदर ढंग से की जा सकती है। अभी हमें शरीर से भी पूजा करना कितना कठिन होता है, हफ्ते में एक बार मंदिर में आना भी कितना कभी कभी कठिन हो जाता है, लेकिन मन में करना तो सभी को सीखना चाहिए। किस तरह से भगवान के सुंदर श्री विग्रह का रूप, हमेशा फोटो जो है भगवान का लेकर रखना चाहिए हृदय में, फोटो एल्बम बनाना चाहिए हमारे हृदय में। इस तरह से ये ब्राह्मण ने भगवान को अपने हृदय में बांध के रखा। तो ऐसे कहानियों से हम समझ सकते हैं कि भगवान के श्री विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और जब हम भगवान के सामने आकर प्रार्थना करते हैं या भोग चढ़ाते हैं या कोई भी अन्य सेवा करते हैं, तो वो सेवा स्वीकार की जाती है, पहुंच जाती है सही ठिकाने। प्रभुपाद जी भगवत गीता में उनके तात्पर्य में समझाते हैं कि ये जो प्रामाणिक अर्चा विग्रह है भगवान की, वो एक पोस्ट बॉक्स के बराबर है। अगर आपको चिट्ठी लिखनी है किसी को, तो आप चिट्ठी लिखकर उसे एक लिफाफे में डालकर, टिकट उसके ऊपर डालकर, आप किसी अधिकृत पोस्ट बॉक्स में, डब्बे में उसको डालते हैं, और फिर चिट्ठी कहां जाती है, उस व्यक्ति को के पास पहुंच जाती है, आपको लेके जाना नहीं पड़ता। शायद आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि चिट्ठी कैसे जा रही है, कोई भी डाकिया आता है, उस पोस्ट बॉक्स को खोल देता है, सारे चिट्ठियां निकाल देता है, यहाँ के पोस्ट ऑफिस में ले जाता है, फिर यहाँ इसका विभाजन होता है, कौन सी चिट्ठी किस जगह के लिए है, फिर रेलगाड़ी से उसको उस ठिकाने भेजते हैं, फिर वहां के हेड पोस्ट ऑफिस में जाता है, वहां से और विभाजन होता है, जिला में जाता है, जिला में जाकर तालुका में जाता है, और किसी न किसी तरह से आखिर में और एक डाकिया आकर उस घर में उस व्यक्ति को वो चिट्ठी दे देता है। लेकिन जब हम चिट्ठी उस पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, तो हमें ये सब पता नहीं होता कि चिट्ठी कैसे पहुंचने वाली है। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि अधिकृत डब्बा है, पोस्ट बॉक्स है, उसमें हम डालेंगे, पहुंच जाएगा। सही है। तो उसी तरह से शास्त्रों के आधार पर हमें श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए कि जब हम भगवान के चरण कमलों में आकर उनके प्रति प्रार्थना इत्यादि अर्पण करेंगे तो ये सब चीजें पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये साक्षात भगवान है। अगर आपको चिट्ठी पोस्ट करनी है और सड़क के किसी भी पड़े हुए डब्बे में आप जाके डाल दें चिट्ठी, तो क्या वो चिट्ठी पहुंच जाएगी? नहीं जाएगी, नहीं, वही पड़ी रहेगी। उसी तरह से किसी साधारण प्रतिमा या पुतली के सामने जाकर आप हाथ जोड़ेंगे, आप सृष्टि के सौहार्द तक भी हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, फिर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि भगवान के पास पहुंचेगा नहीं वो, क्योंकि आप गलत जगह जा रहे हैं। तो भगवान के श्री विग्रह वो अधिकृत पोस्ट बॉक्स है जिससे हमारी सेवा प्रार्थना इत्यादि स्वीकार हो जाएगी, पहुंच जाएगी भगवान के पास में। तो ऐसे कई सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, इनमें से थोड़ी लीलाएं आज आपको हम सुनाना चाहेंगे, ये साबित करने के लिए कि वास्तव में भगवान के अर्चा विग्रह में और भगवान में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं श्री कृष्ण है, उनके एक पार्षद थे, उनके बहुत शुद्ध भक्त, जिनका नाम था मुकुंद दास। वैसे थे वो वैद्य। हाँ, वो एक समय था जब डॉक्टर वैद्य भी भक्त हुआ करते थे। तो खैर, वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत शुद्ध भक्त थे और अपने घर में भी वो भगवान की सुंदर मूर्ति रखा करते थे, राधा कृष्ण की मूर्ति थी और वहां उनको सुंदर ढंग से पूजा करते थे। तो जब वो एक बार उनके राधा कृष्ण मूर्ति को भोग चढ़ाने ही वाले थे कि अचानक कोई बुलावा आया कि कोई पेशेंट बहुत बीमार है, बहुत खतरनाक परिस्थिति है, आपको अभी अभी चलना होगा। तो मुकुंद दास बड़े दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। अभी अभी मैं भगवान की सेवा करके भोग चढ़ाने वाला था और वहां से ये इमरजेंसी आ गई, अभी मुझे जाना पड़ेगा, तो क्या करूं। तो उन्होंने सोचा, अपने छोटे पुत्र को देखा वहां, जिसका नाम था रघुनंदन, और कहा, अरे रघुनंदन, देखो मैं भोग चढ़ाने वाला था लेकिन अभी मुझे किसी मरीज को देखने जाना है, तो तुम भगवान को खिलाओ। तो ये कहकर मुकुंद दास वहां से चले गए और उधर रघुनंदन ने देखा कि यहां थाली है, थाली में नाना प्रकार के सामग्री हैं, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन हैं। अभी रघुनंदन तो उस समय छोटे बालक थे, उनको ये नहीं मालूम था कि भोग चढ़ाना ये होता क्या है। उन्होंने इतना सुना कि पिताजी ने बताया है कि भगवान को खिलाओ, तो उन्होंने सोचा कि मुझे भगवान को खिलाना है। तो उन्होंने थाली भगवान के सामने रख दी और कृष्ण भगवान से कहने लगे कि हे कृष्ण, अभी खाओ। तो भगवान ने खाया नहीं, वास्तव में भगवान ने खा लिया, क्योंकि जब हम भगवान के सामने थाली रखते हैं, कोई भोग रखते हैं, तो भगवान खाते हैं, लेकिन कैसे खाते हैं? अपने नेत्रों से खाते हैं। अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। भगवान क्योंकि दिव्य है, सच्चिदानंद है, इसलिए उनका कोई भी शरीर का अंग दूसरे किसी भी शरीर के अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। दूसरे शब्दों में, उनके आंख उनके काम का कान का कार्य कर सकते हैं, उनकी जिह्वा उनके आंखों का काम कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। भगवान के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। वैसे हम देखते हैं केवल आंख से ना, लेकिन भगवान अपने कानों से भी देख सकते हैं, भगवान अपने उंगली से भी देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते। तो भगवान अपने आंखों से ही हमारी भोग को स्वीकार करते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। और जादू यही समाप्त नहीं होती, वो आंखों से स्वीकार करने के बाद में थाली में जैसे है वैसे उसको रख देते हैं चखने के बाद में, और फिर वो प्रसाद बन जाता है। और फिर वो थाली को लेकर हम वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं और हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और केवल अर्पण करने मात्र से वो भोग जो है प्रसाद बन जाता है, आध्यात्मिक बन जाता है। तो ये सब तत्व छोटे बालक को कहां मालूम था? वो तो छोटा बालक है, ये अंगान यस्य सकल इंद्रिय वित्तमंती, ये सब तो रघुनंदन को नहीं मालूम था। तो उसने कहा कृष्ण, हे कृष्ण खाओ। कृष्ण ने खा लिया, लेकिन अपने आंखों से खा लिया। लेकिन रघुनंदन सोच रहे थे कि कृष्ण को खाना चाहिए जैसे हम खाते हैं, प्लेट खाली हो जाना चाहिए, मुंह से खा लेना चाहिए। जब प्लेट तभी भी भरा रहा तो रघुनंदन कहने लगे कि अरे कृष्ण क्यों नहीं खा रहे हो तुम, अभी तक कृष्ण कुछ करे नहीं, प्लेट वैसे का वैसे भरा रहे। तो अभी रघुनंदन बोलने लगे मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया है और पिताजी लौट के आएंगे और प्लेट अभी तक भरा हुआ रहा तो पिताजी मुझे डांटेंगे कि तुमने कृष्ण को क्यों नहीं खिलाया, तो खाओ। और जब कृष्ण नहीं खाने लगे तो रघुनंदन वहां रोने लगे क्यों नहीं खा रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस छोटे से बालक का प्रेम देखा और क्या किया, खा लिया, सारी थाली साफ कर दी, हाथ सामने किया, खाया। और बाद में रघुनंदन ने आके देखा, पर्दा खुल के देखा, हाँ बहुत अच्छा खा लिया, अच्छा बहुत हुआ, अच्छा हुआ कृष्ण, अभी पिताजी मेरे से गुस्से नहीं होंगे। और फिर थोड़ी देर बाद पेशेंट को ठीक करके मुकुंद दास फिर से आए अपने घर में, बड़ी भूख लगी थी, कहने लगे अरे रघुनंदन महाप्रसाद तो खिलाओ। हाँ महाप्रसाद तो खा लिया कृष्ण ने, हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो प्रसाद दे दो मुझे। नहीं लेकिन प्रसाद तो कुछ है नहीं, क्योंकि कृष्ण ने खा लिया। अरे ये क्या बोल रहा है बच्चा, खुद इसने खा लिया होगा और अभी बोल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने खा लिया। तो दिखाओ थाली, दिखाओ, देखो थाली भगवान ने ले लिया। कैसे ले लिया? हाँ भगवान, मैंने रखा, भगवान से बोला मैंने नहीं ले रहे हो, अब मैं रोने लगा तो भगवान ने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ, ले लिया। तो उस समय मुकुंद दास सोच रहे थे कि ये लड़का कुछ शरारती है, कुछ किया होगा शरारत, लेकिन फिर भी हृदय में थोड़ा संशय था कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा है, तो देखते हैं। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, कहा अरे रघुनंदन ये लड्डू है ना, ये लड्डू फिर से अर्पण करो। तो फिर से रघुनंदन ने जाके कृष्ण के सामने थाली रखी, अरे कृष्ण अभी लड्डू खाओ। तो कृष्ण अभी आदि हो गए थे रघुनंदन के आदेश का पालन करने के लिए, तो आधा लड्डू खा लिया और रख लिया, चख के रख लिया। और जब मुकुंद दास छुप के देख रहे थे, फिर पर्दा खोला देखा तो वाकई अभी लड्डू खा लिया था। तब उन्होंने वास्तव में अपने पुत्र को आलिंगन किया, कहा कि मेरा जीवन धन्य हो गया है क्योंकि तुम जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ। और उनके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। और आगे चल के चैतन्य महाप्रभु को भी इस घटना के बारे में जानकारी हुई और एक दिन मुकुंद दास को सामने बुलाकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे मुकुंद दास, मैंने सुना है कि तुम्हारा पुत्र है जो बहुत अच्छा भक्त है, जिसका नाम है रघुनंदन, तो मुझे ये बताओ कि तुम रघुनंदन के पिता हो और वो पुत्र है, या रघुनंदन तुम्हारे पिता है और तुम उसके पुत्र हो। तो मुकुंद दास कहने लगे वास्तव में संसार तो कहता है कि मैं पिता हूं और वो पुत्र है, लेकिन सत्य तो ये है कि वो मेरा पिता है और मैं पुत्र हूं, क्योंकि इसकी वजह से मैं जान गया हूं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति क्या चीज है। और ये मुकुंद दास कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक बार जो वहां के बादशाह थे उन्होंने उनको बुलाया था, वो भी बीमार थे, तो मुकुंद दास उनके पलंग पर बैठकर उनका इलाज कर रहे थे। तो उस समय बादशाह के कोई सेवक ने आकर एक मोर पंख से हवा देना चालू कर दिया। तो जब मुकुंद दास ने मोर पंख को देखा तो तुरंत क्या स्मरण आया, भगवान श्री कृष्ण। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण आया तो तुरंत वो उनके शरीर में सारे अष्ट सात्विक विकार शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट होने लगे, कंठ गदगद होने लगा, पुलक अश्रु धारा बहने लगी और रोमांच खड़े हो गए और वहां से वो गिर पड़े पलंग से। पलंग काफी ऊंचा था, धाड़ करके नीचे गिर पड़े। अब बादशाह बड़े परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, और उस समय फिर उन्होंने कहा कि अरे तुमको क्या हो गया है, क्या बात है? तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं बादशाह जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे केवल बीमारी है, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को क्या बोलते हैं? दौरा, मुझे दौरे की बीमारी है, ऐसे दौरा आ जाता है, तो इसलिए मुझे बीमारी है। लेकिन ये बादशाह बड़े बुद्धिमान थे, तो बादशाह जानते थे कि ये कोई साधारण दौरा नहीं है, ये कृष्ण का भक्त है। तो ऐसे थे मुकुंद दास, इस तरह के भक्त थे, और फिर भी वो कह रहे हैं कि रघुनंदन जो है वो मेरा पिता है। तो इस तरह से भगवान ये देखते हैं कि सामने वाले जो मेरा भक्त है उसके हृदय में श्रद्धा कितनी है, कितना विश्वास है इसके हृदय में कि मैं भी एक व्यक्ति हूं, मैं पत्थर या मूर्ति नहीं हूं साधारण। उस बालक के हृदय में दृढ़ विश्वास था कि ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो जिस तरह से जिस भावना लेकर मेरे सामने आता है उसी भावना से मैं उसके सामने आता हूं। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के सामने जाके सोचेंगे कि ठीक है प्रार्थना करना ये थोड़े पुण्य की बात है, हमने क्लास में सुना है कि ये भगवान से अभिन्न है, फिर भी ये धातु तो दिखाई पड़ रहा है, ये धातु है आखिर में, भगवान के प्रतिनिधि हो सकते हैं, कोई यंत्र हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं, पोस्ट बॉक्स हो सकते हैं, लेकिन साक्षात भगवान है क्या? तो जब तक ऐसे विचार हमारे मन में हैं, तो भगवान भी हमारे सामने वही रूप धारण करके रहेंगे, एक धातु के बनाए हुए मूर्ति का रूप धारण करेंगे। लेकिन जब हमारे हृदय में रघुनंदन जैसे भावना होगी कि ये कोई प्रतिमा नहीं है, ये केवल मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है जो बोल सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु के और एक भक्त थे जिनका नाम था गौरीदास पंडित, और मायापुर के पास में एक गांव है जिसका नाम है अंबिका कालना, तो इस गांव में वो निवास करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के पहले की बात है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अन्य भक्तों के संग में वहां गौरीदास पंडित के गांव में आए थे, और कई दिनों तक उन्होंने हरि नाम संकीर्तन किया था और कृष्ण प्रेम को सब जगह फैलाया। और जब उनके वापस जाने की बात आई तो गौरीदास पंडित बड़े उदास हो गए, चैतन्य महाप्रभु के सामने आकर बोलने लगे कि प्रभु अभी आप चले जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे, आप यहां आकर हमेशा हमारे साथ में रहें, इसी गांव में रहें, यही हमारी नम्र प्रार्थना है आपके चरण कमलों में, हमें छोड़ के मत जाइए। तो महाप्रभु ने कहा कि ये कैसे संभव है, मुझे तो सब जगह हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन फैलाना है, और वैसे भी गौरीदास चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए खास मूर्ति मेरी और नित्यानंद प्रभु की मूर्ति बना के देता हूं, तुम इन मूर्तियों की पूजा करो। और खुद चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से उनकी ही निजी मूर्ति बनाई, और पहली गौर निताय की मूर्ति बनी, और वो उन्होंने गौरीदास पंडित को भेंट दी। और फिर जब वो रवाना होने के लिए तैयार हुए थे तो उस समय गौरीदास पंडित बोलने लगे कि हे प्रभु, ये तो आखिर में मूर्ति है, आपकी मूर्ति रहेगी और आप चले जाएंगे तो कैसा होगा? तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि अरे गौरीदास, क्या तुम्हें वैष्णव सिद्धांत नहीं मालूम कि मेरे मूर्ति में और मुझ में कोई अंतर नहीं? जब मेरी मूर्ति यहां विराजमान है तो इसका मतलब है कि मैं हूं यहां पर, क्योंकि मुझ में और मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे साक्षी गोपाल को अपने तर्क से हरा दिया था उस नवयुवक ब्राह्मण ने, उसी तरह से गौरीदास पंडित ने भी अपने तर्क से महाप्रभु को हरा दिया, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान से ज्यादा बुद्धिमान रहता है। तो गौरीदास पंडित ने कहा, अगर आप में और आपके विग्रह में मूर्ति में कोई अंतर नहीं है,
तो आप रहिए और मूर्ति को जाने दीजिए।
तो चैतन्य महाप्रभु सोच लगे ये बड़ा बुद्धिमान है मेरा भक्त, बड़ा चतुर है ये, अभी क्या किया जाए, इसने मुझे मानना पड़ेगा इसकी बात। तो कहे ठीक है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सिंहासन के ऊपर चढ़े, यूं हाथ करके खड़े हो गए और वो मूर्ति बन गए। और मूर्ति जो है वो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बनकर वो चलते गए अपने भक्तों के संग में। तो इस तरह से गौरीदास पंडित के घर में मंदिर था जहां गौर निताई उपस्थित थे और रोज बड़े प्रेम से बड़े शुद्ध भावना से उनका श्रृंगार करते थे, उनकी सेवा करते थे। वैसे वो बहुत गरीब भक्त थे, ब्राह्मण थे, आजकल के ब्राह्मण की तरह नहीं, उस जमाने के ब्राह्मण थे वो, तो बहुत गरीब थे। और कभी कभी जब वो मंदिर का दरवाजा खोलते थे तो अचानक देखते थे कि इतना बढ़िया श्रृंगार, इतने बढ़िया आभूषण, और हमेशा सोचते थे कि आप तो रोज कुछ न कुछ चमत्कार करते रहते हैं, मेरे पास कहां धन इतना सब श्रृंगार करने के लिए, आभूषण लाने के लिए। तो इस तरह से गौर निताई अपने शुद्ध भक्त को प्रसन्न करने के लिए खुद ब खुद कोई न कोई श्रृंगार कर लेते थे, अपना ही आभूषण पहन लेते थे, कहां से लाते थे गौरीदास पंडित को ही पता नहीं चलता था। तो ऐसे तो चैतन्य दास ने अंबिका कालना गांव में एक बहुत बड़ी हरिनाम संकीर्तन का अनुष्ठान का आयोजन किया। बहुत संख्या बड़ी संख्या में जगह जगह से भक्त आए और धूमधाम से वहां उत्सव चल रहा था, धुआंधार कीर्तन चल रहा था। अचानक क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु गौर निताई जो कि मंदिर के अंदर सिंहासन पे खड़े थे और मंदिर का दरवाजा खुला था तो वो दर्शन कर रहे थे किस तरह से भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, उनसे रहा नहीं गया, अपने सिंहासन से कूदकर भक्तों के बीच में कूद पड़े, वो भी कीर्तन करने लगे। अब गौरीदास पंडित देख रहे हैं, अरे 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 कहां गए, लाठी लेकर उनके पीछे गए, कहां जा रहे हो मंदिर छोड़ के, कंधे कहां जा रहे हो, पीछे आओ। और जैसे उनका पीछा करने लगे लाठी लेकर, तुरंत डर के मारे भागने लगे इधर उधर, और फिर सीधा वो गए चैतन्य दास के पास में और उनके हृदय में प्रवेश कर दिया। जब हृदय में प्रवेश कर गए तो उस समय जो गौरीदास पंडित है उन्होंने अपने शिष्य का आलिंगन किया, कहने लगे मेरा जीवन आज धन्य हो गया कि तुम जैसा शिष्य मुझे मिला, कि तुम्हारे हृदय में साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा हृदय चैतन्य दास। केवल चैतन्य दास नहीं, जिसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश किया है। और यही हृदय चैतन्य दास आगे चल के उनका नाम क्या बना, कोई कह सकते हैं? श्यामानंद पंडित। आगे चल के नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य के साथ में उन्होंने पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी गौड़ी वैष्णव इतिहास में आरंभ की, पुस्तक वितरण का कार्यक्रम उन्होंने पहले शुरू किया। तो इस तरह से गौर निताई किसी न किसी तरह से फिर से आ गए अपने सिंहासन पर। और उसके बाद गौरीदास पंडित ने कहा अब खबरदार जो इधर से गए, तो बार बार वो क्या करते थे, ज्यादा समय के लिए वो पर्दा खोलते नहीं थे, थोड़े देर समय के लिए दर्शन खोलते फिर से पर्दा बंद करते, जैसे वृंदावन में बांकी बिहारी मंदिर में होता है, ऐसी ही घटना हुई थी वहां भी। तो उस मंदिर में क्या होता है कि मिनट मिनट में दर्शन बंद कर देते हैं फिर खोलते हैं, फिर बंद करते हैं खोलते हैं। और जब बहुत बड़ी संख्या में उत्साही भक्त आते हैं कीर्तन करते हैं, भावुक भक्त आते हैं, तो पुजारी बड़े नर्वस हो जाते हैं कि अभी कूद पड़ेंगे, दर्शन बंद कर लो जल्दी से। तो आज भी अंबिका कालना में यह प्रथा चलती है कि दर्शन खुला लंबे समय के लिए नहीं रहता है। तो देखिए जिनकी श्रद्धा होती है तो वो श्री विग्रह के साथ क्या क्या लीला करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये केवल कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के और एक भक्त थे जिनका नाम था राघव पंडित गोस्वामी। और ये राघव पंडित ये बहुत धनी व्यक्ति थे और वो विख्यात थे अपने अर्च विग्रह की पूजा के स्टैंडर्ड के लिए।
इतनी बढ़िया पूजा करते थे अर्चा विग्रह की, इतनी अच्छी तरह से सेवा करते थे कि इसकी जो इसका वो सब जगह प्रसिद्ध थे इसके लिए। बताया जाता है कि उनके पास बड़े बड़े बगीचे थे जिनके नारियल के पेड़ भी थे जिसके अंदर, और हालांकि इतने नारियल के पेड़ थे लेकिन फिर भी अगर उनको पता चल जाता कि कहीं 20 मील दूर कोई अच्छा नारियल का पेड़ है जहां कोई अच्छा नारियल मिल रहा है जिसका जल बहुत शीतल और मीठा है, तो क्या करते थे, लोगों को भेजते थे 20 मील दूर और बहुत ज्यादा कीमत में भी वो खरीद के ले आते थे और भगवान को पिलाते थे। हालांकि उनके पास कोई नारियलों की कमी नहीं थी, तो इतना प्रेम करते थे वो अपने विग्रह से, अपने विग्रह की सेवा के लिए ये भी करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनके पुजारी, उनके हाथ में ये नारियल था और नारियल एक हाथ में रखे हुए वो भगवान के गर्भगृह में सिंहासन की ओर बढ़ रहा था, और सपोर्ट के लिए उन्होंने ऊपर दरवाजे को हाथ उंगलियां रखी और फिर उन उंगलियों से वो डाब को या वो नारियल को छुआ। तुरंत राघव पंडित ने कहा, अरे 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 क्या कर रहे हो, क्या कर दिया तुमने, अब ये नारियल फेंक दो। तो पुरोहित ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, ये तो साफ है, शुद्ध है। तो राघव पंडित ने कहा कि तुम समझते नहीं हो कि देखो यहां पर लोग आते हैं बाहर से तो उनके पैरों में धूल होती है, पैरों की धूल जमीन पर लग जाती है और फिर वो चले जाते हैं, धूल रह जाती है, और फिर कभी कभी लोगों के आने जाने से धूल उड़ जाता है, और धूल उड़ता है तो ऊपर अटक जाता है कभी दीवार के, कभी खिड़की के ऊपर, कभी दरवाजे पर, तो वहां पर धूल है जो कि लोगों के पैरों को छुआ हुआ है। अरे अभी तुमने दरवाजे को छुआ अर्थात वो धूल वहां लग गई, और वो धूल अभी तुमने भोग को स्पर्श किया तो ये दूषित हो गया, अब फेंक दो इसको और एक डाब लेकर आओ। और कहीं दूर से फिर दूसरे डाब लेकर भगवान को भोग चढ़ाया। अब देखिए ऐसी घटना जब हम साधारण भक्त हम सुनते हैं तो सर चकरा जाता है, सोचते हैं कि अरे रे अगर हम ऐसा करेंगे तो हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं, चेतावनी देते हैं कि देखो राघव पंडित गोस्वामी की नकल मत करो। हाँ हमें भी स्वच्छ रहना चाहिए, स्नान करके ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, दूसरे जो विधि विधान और यम नियम है भगवान की मूर्ति की सेवा के लिए उन सब का बहुत अच्छी तरह से पालन तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से राघव पंडित कर रहे थे वैसे हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी नकल नहीं कर सकते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि राघव पंडित कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे जिनको स्वच्छता की कोई पागलपन था। ऐसे भी एक पागलपन होता है, आप शायद ऐसे कोई लोगों को जानते होंगे जो स्वच्छता के बारे में इतने पागल हैं कि 10-20 बार स्नान करते हैं, अपने कमरे को 10-20 बार झाड़ू लगाते हैं, पोता मारते हैं, अपने हर एक वस्तु को 10 बार धोते हैं, एक तरह का पागलपन है, ऐसे कई लोग हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं कि ये मत सोचिए कि राघव पंडित ऐसे व्यक्ति थे, उनके हृदय में प्रेम भावना इतनी तीव्र थी कि ये भावना इस तरह से प्रकट हो रही थी। इसलिए जब वो नारियल भगवान के सामने रखते थे तो भगवान जल पी डालते थे, कुछ छोड़ते नहीं थे, जैसा रघुनंदन के साथ में हुआ था, पूरा जल पी डालते, खाली कर देते नारियल को, और फिर उस नारियल को काट कर अंदर जो मलाई होती है नारियल की फिर वो थाली में लेकर भगवान के सामने फिर से रख देते और वो मलाई भी खा लेते, थाली को खाली कर देते भगवान। इस तरह से अपने भक्तों के साथ में भगवान अपने श्री विग्रह के रूप में भी लीला करते रहते हैं। सनातन गोस्वामी षड गोस्वामी में से सबसे वरिष्ठ, चैतन्य महाप्रभु के प्रिय शिष्यों में से, वो वृंदावन में रहते थे और वो राधा मदन मोहन जी की सेवा करते थे, और आप तो जानते हैं कि वो तो बाबा जी का जीवन जी रहे थे, बहुत सारे ग्रंथ लिखते थे, ग्रंथों की रचना करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे, भजन करते थे, प्रचार करते थे, और गरीब थे तो जो भी वो खाते थे तो वो भगवान को खिलाते थे, क्योंकि ऐसी एक प्रथा, ऐसा एक नियम है, ऐसी कहावत है संस्कृत भाषा में कि यद अन्न पुरुषो भवति तद अन्नस्तास्य देवताः, कि जो भी आपके पूजनीय हैं, देव हैं, उनको अब वो भोग चढ़ाएंगे जो आप स्वयं खाते हैं, है ना। जैसे अभी हमारे देश में जो मंदिर हैं उसमें हम देखते हैं कि क्या दाल चावल चपाती ये सब चीजें भोग चढ़ाते हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर में जाएंगे तो ये सब चढ़ाते हैं भोग, क्यों? क्योंकि हमारे देश में लोग यही सब खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, भाजी सब्जी खाते हैं, फल फूल खाते हैं, तो ये अर्पण किया जाता है। लेकिन अभी जब इस्कॉन संस्था हो गई और वैष्णव पंथ भी देश विदेश में चला गया, पश्चिम देशों में भी, तो वो लोग जिस प्रकार का भोजन करते हैं वो वहां वैसे भोग चढ़ाते हैं, जैसे केक है, आइसक्रीम है और नाना प्रकार के उनके जो व्यंजन, सैंडविच है, वो उनका तरह का भोग चढ़ाते हैं, क्योंकि वो लोग वैसा खाते हैं। यद अन्न पुरुषो भवति तद अन्नस्तास्य देवताः। तो सनातन गोस्वामी इसी तर्क को से कह रहे थे कि देखो, मैं बाबा जी हूं वृंदावन में, मेरे पास यहां कोई 56 भोग की व्यवस्था नहीं है, मैं यहां रूखी सूठी 2 चपाती खा लेता हूं, बस आपको भी इसी से संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो वो ऐसे खिलाते थे और बेचारे मदन मोहन जी क्या करें, स्वीकार खाते रहते थे। तो एक बार मदन मोहन जी अर्थात विग्रह ने सनातन गोस्वामी से कहा कि अरे सनातन, ठीक है तुम मुझे 56 भोग नहीं दे रहे हो, मैं कोई कंप्लेन नहीं करता, शिकायत नहीं करता हूं, लेकिन कम से कम रोटी में थोड़ा नमक तो डाला करो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखिए, मैं जो खाता हूं मेरे पास जो है उससे वही मैं आपको अर्पण करता हूं, मेरा काम आप ही का काम कर रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, ग्रंथ लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, अब मुझे कहां समय है जहां जाके नमक लाओ, ये करो वो करो, आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। आज नमक पूछ रहे हैं, कल शक्कर पूछेंगे, न जाने कल परसों क्या पूछेंगे, जो मैं खा रहा हूं वही आपको अर्पण कर रहा हूं। तो बेचारे मदन मोहन जी सोचे ठीक है, क्या किया जाए। लेकिन मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के हृदय को समझे कि ये बहुत अच्छी तरह से मेरी सेवा करना चाहता है, इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति को प्रेरित किया, एक व्यापारी को प्रेरित किया कि उसका नौका जो है यमुना जी में अटक गया, जिसमें बहुत सारा माल था, कर्पूर इत्यादि बहुत कुछ था, और वो नाव वहां, जहाज जो है वो अटक गई वहां पे, और वो तट पर आए और वहां पास में सनातन गोस्वामी थे, तो सनातन गोस्वामी की कृपा प्राप्त हो गई और वो नौका छूट गया, और इस तरह से उस व्यापारी ने वो माल लेकर बेचा, बहुत उसको मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, बहुत पैसा कमाया उसने, और कमाने के बाद में सनातन गोस्वामी के पास में आए और कहने लगे कि आपकी कृपा से मेरा नौका छूट गया जो अटका हुआ था, और इसकी वजह से मैंने बहुत पैसे कमाए, अभी मैं इन पैसों का प्रयोग जैसे आप कहें वैसे मैं करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी वजह से मेरा सब कुछ बच गया। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मदन मोहन जी के लिए कोई अच्छी सेवा की व्यवस्था कीजिए, एक अच्छा मंदिर बनाइए। तो फिर उस व्यापारी ने एक सुंदर मंदिर बनाया, आज भी ये मंदिर है वृंदावन में, पुराना मंदिर, 2 मदन मोहन मंदिर है, एक पुराना, अभी एक नया भी बना है। तो पुराना मदन मोहन मंदिर है, बड़ा ऊंचा है, और इस तरह से मदन मोहन जी के लिए अच्छा निवास स्थान बना, फिर अच्छी तरह से भोग चढ़ रहा था, मदन मोहन जी संतुष्ट हो गए। तो इस तरह से मदन मोहन जी अगर चाहते तो उनको इंतजाम करना पड़ा भोग के लिए, तो हम सनातन गोस्वामी की नकल नहीं कर सकते। जब हम भोग चढ़ाते हैं भगवान को तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि कहीं नमक कम नहीं, शक्कर कम ज्यादा नहीं, हम ये नहीं बोल सकते आपको चाहिए तो आप इंतजाम कर लीजिए, नहीं, सनातन गोस्वामी जैसे भक्त की नकल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस कहानी का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा भक्ति रहती है उसके लिए विग्रह विग्रह नहीं, वो साक्षात भगवान है। बंसीदास बाबा जी नाम के भी एक बहुत महान भक्त हुए, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में हुए थे। वो हमेशा गले में एक थैली लटका के चलते थे, उस थैली के अंदर शालिग्राम शिला थी उनकी, और वो शालिग्राम शिला की पूजा करते थे जहां भी जाते थे। और उनकी एक कुटिया थी, कुटिया तो क्या, चार खंबे थे, थोड़े पत्ते थे साइड में ऊपर, और दरवाजा भी नहीं था, और दो चार बर्तन थे टूटे फूटे, और कुछ नहीं था उनके पास में। दिन भर घूमते थे, कृष्ण का नाम लिया करते थे, बस यही उनका काम था। तो एक बार किसी व्यक्ति ने सड़क पर जाते हुए दूसरे व्यक्ति के साथ बात करते हुए गवर्नमेंट अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया, तो उस समय बंसीदास बाबूजी ने सुना, ये गोवर्धन गोवर्धन बोल रहे हैं। तुरंत जय गोवर्धन जय गोवर्धन कूदने लगे, चिल्लाने लगे, गोवर्धन महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय। तो ये भी एक प्रेरणा है भक्ति के लिए। तो इस तरह के भक्त थे बंसीदास बाबा जी। तो एक बार क्या हुआ कि उनके कुटिया से वो दो चार बर्तन जो थे वो चोरी हो गए। तो बंसीदास बाबा जी आए और उन्होंने देखा कि बर्तन नहीं तो भोग कैसे चढ़ाऊंगा, तो शालिग्राम को डांटने लगे, ये आपकी हरकत है, आपके अनुमति के बिना कौन यहां से भला कोई ले जा सकता है कुछ, आपने ही कुछ किया है तो आपको भूखा रहना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं करने वाला, भोग नहीं देने वाला, अभी आप खुद भी भूखे रहे, लेकिन आपको अभी कुछ नहीं देने वाला, अगर आपको भोग चाहिए तो आपको बर्तन वापस लाने हैं, नहीं तो फिर भोग नहीं चढ़ सकता। और वो अपने भजन में मग्न हो गए। दो घंटे के बाद में बर्तन आ गए, और फिर बंसीदास बाबा जी ने कहा, ठीक है अभी से ऐसे सब मत करना, नहीं तो मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। तो ये उनका प्रेम था शालिग्राम शिला के प्रति। शालिग्राम शिला कोई देखे तो कहेगा ये तो पत्थर है, साधारण पत्थर नहीं है, साक्षात विष्णु है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो इस तरह से कितने ही ऐसे कहानियां हैं, लीलाएं हैं भगवान के भक्तों के, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे हृदय में श्रद्धा रही तो हम भगवान श्री कृष्ण के अर्चक विग्रह के संग का बहुत बहुत लाभ उठाकर भक्ति में तेजी से प्रगति कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम दर्शन करते हैं भगवान के अर्चक विग्रह का, हमें श्रद्धा से ये जान लेना चाहिए कि मैं केवल मूर्ति दर्शन नहीं कर रहा हूं, मैं साक्षात भगवान देख रहा हूं, और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु कृपा करके मेरे अंदर वो श्रद्धा दीजिए कि मैं समझूं कि आप साक्षात भगवान हैं, आप कोई मूर्ति प्रतिमा नहीं है। तो ये भगवान का बड़ा कृपालु अवतार है, और सबसे बड़ा कृपालु अवतार भगवान का है इस कलयुग में भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें भगवान के इन दोनों अवतारों का अवश्य लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत ही ध्यान से ये प्रवचन सुना। कोई टीका टिप्पणी